नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।